Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और इन्हीं वासनाओं की वजह से हम लोगों को बार बार अपने मन कमजोर होने के कारण अहम ब्रह्मास्मि की तरफ तो हम नहीं बढ़ पाते, बस अहम कर्ता अहम भोक्ता की तरफ ही लगे रहते हैं। क्योंकि ये नियम है, जहां व्यक्ति गिरता है, जिस चीज से गिरता है, वहीं पर उसी चीज के सहारे उठता भी है। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम, जिस जमीन पर फिसल के गिरे उसी जमीन के सहारे उठ करके खड़े भी हो गए, पैर में कांटे लग गए, कांटे को कांटे से निकाल दो, ठीक है। एक कांटे ने कष्ट दिया, एक कांटे ने दूसरे कांटे को निकालने के लिए काम किया, और उससे थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। जो कांटा चुभा है ना, उसको यदि पूरा निकालना है तो उस कांटे से भी उस कांटे को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो वो पूरा उखड़ता है। तो घट के ज्ञान की सामर्थ्य और घट के विषय के प्रति आसक्ति, ये जो घाल मेल हो रहा है, इसको थोड़ा हमें अलग करना है। अभी हम ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और विषय, इनकी बात कर रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप हो गया रस, वरुण देवता है इसके, और जिह्वा के द्वारा छह प्रकार के रसों का ज्ञान होता है। वो रस क्या है? मधुर, अम्ल, कटु, काषाय, तिक्त, लवण भी है। ये छह प्रकार के षडरस। एक ही रस वाले भोजन करो ना तो मजा नहीं आता है। थोड़े से चटनी हो, थोड़ा अचार हो, पापड़ हो बीच बीच में, और सबसे बढ़िया हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का नाम है रसोत्पादिका, रस को उत्पन्न करने वाली। जब जब जिह्वा में मिर्ची के जलन होती है तो जिह्वा के अंदर से एक अलग ही पानी निकलता है। अब जो मिर्ची नहीं खाते उन्हें नहीं मालूम होगा। भगवान जब वनभोज कर रहे थे ना अपने ग्वाल बालों के साथ, दधि अन्न, उसमें भी हरी मिर्ची नींबू के टुकड़ा सब उंगलियों में फंसाए हुए थे। सड़ रस ये बोलते हैं। जिह्वा के द्वारा रस का ज्ञान हुआ, ये हो गए पांच भूतों में से जल के सत्गुण, आकाश, वायु, तेज, जल, और वही रस बनकर के शरीर में जो बनता है तरल पदार्थ के रूप में मूत्र आदि से, ये उपस्थ। उपस्थ का विषय बना, उधर हो गया जिह्वा, इधर हो गई उपस्थ। ये दोनों इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। पांचवा सुस्पष्ट है, वही बचा पृथ्वी। उसके जो सत्गुण है, घ्राणेन्द्रिय नाक, विषय हो गए सुरभि असुरभि, सुगंधी और दुर्गंधी। और उसी पृथ्वी का जो स्थूल भाग है, मल बन करके वायु से निकलता है और उसमें से ही गंधादि निकलती है। ये हो गए पांच भूतों के सत्वगुण और रजोगुण के विचार। जिन लोगों की प्रक्रिया याद होगी उनको तो अच्छी तरह समझ में आया होगा, और नहीं ये प्रक्रिया याद है तो इसको याद कर लेना। अहम ब्रह्मास्मि की भाषा बाद में बोलना, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि बोलते समय हम कहां गड़बड़ी करते हो बात हम आपको अभी बताएंगे। बोलना आसान है, पढ़ लिया बोल लिया हो गया, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा। पांच भूतों के सत्गुण हो गए पांच विषय, पांच भूतों के रजोगुण के भी विषय हो गए पांच। बोलना, लेना देना, चलना फिरना, मलमूत्र का विसर्जन करना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होना, आंखों से देखना, जिह्वा से चखना, नाक से सुगंधी दुर्गंधि का ज्ञान होना। अब पांच भूतों के जो तमोगुण का कार्य है वो क्या है? वो विषयों में होने वाली आसक्ति, विषयों में होने वाले आसक्ति ही मूल रूप से पांच भूतों का तमोगुण वाला कार्य है। जब चिंतन प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, शब्द निकला मुंह से, कार्य किसका है? आकाश का। जो शब्द निकल गया, आकाश में लीन हो गया, जब हमारा मन मजबूत होगा उस शब्द का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। कौन सा शब्द? जो सुख और दुख का कारण बने, जो शब्द ज्ञान प्रदान करे, जिस शब्द से मन को मजबूती मिले, वो तो हमें लेना है, क्योंकि शब्द की एक अपनी शक्ति होती है। वो शक्ति क्या है? जैसे कोई बोलते हैं कि ठीक है, जहां पर वाणी की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, और फिर परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिए वाणी का ही सहारा लिया जाता है, कानों से ही सुना जाता है, तो कैसे होता है? तो कह दिया ये वैसा ही है जैसे सोया हुआ व्यक्ति गिलास जोर से गिर जाए पत्थर पे और उसकी आवाज से उठ जाता है, तो इसमें गिलास के आवाज का कोई दोष है क्या? उसकी महिमा इतनी बड़ी है कि वह सोए हुए व्यक्ति को जगा देता है। उस आवाज की ऐसी महिमा है, वो आवाज उठा देती है सोए हुए को। ऐसे ही तत्त्वमसी महावाक्य की महिमा ऐसी है कि अनादि काल से सोए हुए जीवात्मा को उठाने की सामर्थ्य है इसमें। भले ही इस वाणी की प्रवृत्ति नहीं है, शब्द की पहुंच नहीं है, वाणी की पहुंच नहीं है, लेकिन तत्त्वमसी का जब प्रतिपादन होता है तो इससे सोए हुए व्यक्ति उठ जाते हैं। जैसे गिलास गिर जाने से आवाज हो और कोई उठ जाए, तो ये नहीं कह सकते गिलास गिरने से और उठने से क्या मतलब हुआ। तो पांच ज्ञान इंद्रिय के द्वारा शब्द स्पर्श आदि का जो ज्ञान हुआ, पांच कर्म इंद्रियों से ही जो सुनना होता है, वाणी से जो बोला, और हाथ से लेना देना, पैरों से चलना फिरना, और मलमूत्र का जो विसर्जन करना, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा है कैसा? असंगो ही अयम पुरुषः। वह असंग है। असंग को प्राप्त करने के लिए जब मन चलता है, इस अब मन को हमें मजबूत बनाना है। मन को मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो श्रुति ने निर्देश किया और विद्यारण्य स्वामी जी भी बोलते हैं, दीर्घम प्रणव मुच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। यदि मन रूपी राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करना हो तो ओमकार का लंबा उच्चारण करो। एक बात आएगी अभी, घबराना मत, आप लोग वेदांती हैं इसलिए बात जचेगी। ओम का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति में अभी मत जाओ, व्युत्पत्ति तो हो जाए अकार उकार मकार। ओम का शाब्दिक अर्थ संस्कृत व्याकरण के हिसाब से ओम बनता है धातु जो है ना, अव माम, अवरक्षणे। रक्षण अर्थ में अव धातु का प्रयोग है और इसी अव से ओम बनता है। अवरक्षणे, अव से क्या बनता है? ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, इसका मतलब है हे परमात्मा हमारी रक्षा कीजिए। इसमें दो बातें आएगी, इसलिए संन्यास दीक्षा में प्रेष मंत्र का विधान है। प्रेष मंत्र में ओमकार का ही उपदेश दिया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि कम से कम 7 लाख ओम का जप हो जाए, उसके बाद जल ग्रहण करें। कितना? 7 लाख। कम से कम एक दिन में हर रोज ऐसा हो, बहुत कठिन काम है। प्रकर्षेण नयति इति प्रणव, ये जो प्रणव है, जो परमात्मा की ओर ले जाने की सामर्थ्य है, जिसमें बोलना तो आसान है ओम ओम ओम, कहीं ऐसा लिखा है कि गृहस्थ को ओम नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है जानते हो, क्यों नहीं बोलना चाहिए और क्यों बोलना भी चाहिए? दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। महात्मा जब बोलते हैं ओम, उसका अर्थ दूसरा है, और जो ज्ञान के बिना ओम बोलते हैं उसका अर्थ दूसरा है। क्योंकि ओम का अर्थ हो गया मेरी रक्षा कीजिए, परमात्मा से हमने प्रार्थना की, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे चीजों की रक्षा कीजिए। गृहस्थ आश्रम में भगवान से प्रार्थना करते तो क्या बोलते, हमारे घर के लोग सब ठीक रहे, ठीक है ना? और जब अव माम ये अर्थ होगा तो इसका मतलब होता है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा मतलब मुझको बचाओ, मुझको अपने शरण में ले लो। तो मुझको मतलब मैं, अर्थात आत्मा के रूप में आप मुझे स्वीकार कर लो। और जो मेरा होता है वो कभी मैं नहीं होता, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। ज्ञानी को पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, यदि मैं शरीर हूं ये बोलेंगे, प्रायः देह के धर्मों के साथ अध्यास होता है। किसके साथ अध्यास होता है? देह के धर्मों के साथ अध्यास है, देह के साथ सीधा अध्यास नहीं होता। कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता कि मैं देह हूं, बोलते हैं कि मैं बीमार हूं। जब पूछो क्या बीमारी है तो मेरा पेट ठीक नहीं है। जो पहले बोला मैं ठीक नहीं हूं, थोड़ी देर के बाद क्या बोल दिया, मेरा पेट ठीक नहीं है। इसका मतलब मैं तो कभी बीमार होता नहीं। और जब भी हम लोग बोलते मैं कभी बीमार नहीं होता, इसका मतलब ही शरीर को लेकर के ही है। इसमें वही बात याद आती है, पूज्यपाद अखंडाजी महाराज की बात, कहीं लिखा भी होगा और कोई बता रहे थे उनका अनुभव, जब थे वो बीमार हॉस्पिटल में, उस समय की बात है शायद। कोई सज्जन गए मिलने के लिए और पूछा महाराज जी आप कैसे हैं, तो बोला मैं ठीक नहीं हूं। बोले महाराज जी आप तो पूरा उपदेश देते थे कि आत्मा में कुछ नहीं होता है, और आप भी बोल रहे हैं मैं ठीक नहीं हूं। महाराज जी बोले मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया तुम हमें ज्ञान देने लगे। ये जो ज्ञान कई बार बहुत भारी पड़ जाता है, जो अनधिकारी व्यक्ति हो ना, उसको यदि ज्ञान मिल जाए तो चलते फिरते कहीं भी देखेंगे, अरे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पेट खराब हो दर्द हो जाए, बोले आज पेट में दर्द, अरे महाराज ये तो शरीर का धर्म है, होता रहता है। ऐसे ज्ञानी किसी काम के नहीं, बड़े रूखे होते हैं लोग। अब वो बोलते हैं महाराज आपने ऐसा बोला कि मैं ठीक नहीं, और आप ही ज्ञान देते थे कि आत्मा में कुछ होता जाता नहीं, और आज आप बोल रहे कि मैं ठीक नहीं हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरी बिल्ली मुझसे म्याओ, बहुत सुंदर उसको समझाया। बोले देख तुमने क्या पूछा कि आप ठीक हो या नहीं, अब तू बता कि तुम्हारा प्रश्न किसको लेकर के, आत्मा को लेकर के कि शरीर को लेकर के। प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर होता है। यही तुम आत्मा के लिए पूछते हो कि ठीक हो कि नहीं, तो तुम्हारा प्रश्न करना ही गलत है। आत्मा न कभी ठीक न कभी खराब हो, तो हमेशा एक जैसा रहता है। और यदि तुमने शरीर के लिए पूछा है तो मेरा उत्तर ठीक है। पूछ रहे हो तुम आप ठीक हो कि नहीं, तो मैंने कहा ठीक नहीं, और मैंने क्या बोल दिया। ये मैं और मेरा का जो विचार हम नहीं कर पाते, चाहे स्वयं का अध्यास हो अर्थात आत्मा का अनात्मा में अध्यास हो, चाहे पराध्यास अनात्मा का आत्मा में अध्यास हो, दोनों में कारण है अज्ञान। और इस अज्ञान का प्रभाव किस पे रहता है, मन पे। जिस मन में अज्ञान का जब तक प्रभाव रहेगा, तब तक यह मन ज्ञान की बात करेगा, ज्ञान हो गया भी जानेगा, अहम ब्रह्मास्मि भी बोलेगा, और थोड़ी देर के बाद क्या बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि तो बोलना ठीक है, लेकिन अभी प्रारब्ध कुछ बाकी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ किए बिना गुजारा नहीं होगा। हमारे वेदांत की एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि एक तरफ चलना पड़ता है। जब आप बंबई से नासिक की ओर निकलोगे तो पूना से दूर होते चले जाओगे, और जब पूना की ओर बढ़ोगे तो नासिक से दूर होंगे। दो नाव में पैर रख करके नदी पार करना बहुत मुश्किल है। शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानम दिदृक्षति। आचार्य विवेक चूड़ामणि में सावधान कर रहे हैं कि शरीर पोषणार्थी सन, शरीर का पोषण करता हुआ, शरीर के तरफ ध्यान रखता हुआ जो व्यक्ति आत्मा के दर्शन करने की इच्छा रखता है, उसका वही हाल है। नदी के किनारे जब पहुंचा, बहुत देर तक खड़ा रहा, नाव वाला आया नहीं, और इतने में एक मगरमच्छ आया, और उसने सोचा कि इसके ऊपर बैठ करके नदी पार कर लूं, हो सकता है कि नहीं। हाँ, जग रहे हो तो नहीं बोलोगे, जो सो गए होंगे उनको लगे हाँ हो जाएंगे। जैसे वहां पर ग्राहम दारु धिया, उस ग्राह मगरमच्छ को लकड़ी के बुद्धि से पकड़ के यदि कोई पार करना चाहे तो यदि साधन गलत मिल जाए तो साध्य की प्राप्ति तो नहीं होगी, बल्कि जो असाध्य है, जो हम प्राप्त नहीं करना चाहते थे, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। वैसे ही जो जो एक तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ हम दूर होते चले जाते हैं। जब हमें कुछ करना है ये भाव आया तो अकर्ता का भाव कमजोर होता है, और जब मुझे कुछ नहीं करना है ऐसा अकर्ता का भाव धारण करेंगे तो कर्तृत्व भाव शिथिल होता है। अब विचार कीजिए हम लोगों की स्थिति अभी कैसी है, तो एक उदाहरण देते हैं। मेढक होता है ना, मेढक, मेढक भी दो तरह का होता है, एक साधारण मेढक और एक जहरीला मेढक। जहरीला मेढक जो होता है उसके पिछले हिस्सा में जहर होता है, और ऐसे जहरीले मेढक को जब सांप पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद जब सांप को मालूम पड़ता है कि मैंने जहरीले मेढक को पकड़ लिया, अब वो दुविधा में फंस जाता है कि यदि मैं इसको मार के खाता हूं तो भी मेरी मौत का कारण बनेगा, और यदि हमने इसको छोड़ दिया तो उछलेगा तो अपने जहर मेरे आंख पे छोड़ेगा, मैं अंधा हो जाऊंगा। न उगलते बने न निगलते बने, बीच में फंस जाता है। और यदि सांप, सांप भी दो तरह के होते हैं, साधारण एक जहरीला। जहरीला सांप जिसको हम फणधर बोलते, फणधर, ऐसा सांप यदि मेढक को पकड़ ले तो मेढक को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, पकड़ते ही उस मेढक मर जाता है। तो यदि सांप मजबूत है, जहरीला है, तो मेढक को पकड़ के तुरंत मारता है, वहां सांप भी सुखी और मेढक भी सुखी, दोनों का काम बन गया। और यदि जहरीला मेढक पकड़ में आ गया सांप को, वहां सांप भी दुखी और मेढक भी, न एक मर पा रहा है न एक मार पा रहा है। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते न विद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। यदि इस कमजोर मन से परमात्मा को हमने पकड़ लिया, यदि सामान्य मन है, सामान्य सांप की तरह, और वह जो इतना भयंकर वाक्य है वो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, इस वाक्य को पकड़ना तो आसान है, लेकिन पकड़ने के बाद यदि इसको हम बीच में छोड़ते हैं तो भी हमारा नुकसान होगा, और पकड़ तो लिया है लेकिन हमारे अंदर उसको पचाने की क्षमता नहीं है तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। अहम ब्रह्मास्मि अब कैसे बोलना है, ऊपर ऊपर से बोलना है कि थोड़ा अंदर से बोलना है? पांचों विषयों का चिंतन किया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर मन में इसका पूरा असर पड़ता है, और यह मन जब मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति का प्राण छूटते समय कैसा उद्गार होता है, कैसा वो प्रकट करता है, ये श्लोक आप लोग बोलते होंगे ना, कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, हे भगवान हे कृष्णा आप ऐसी कृपा करना जब इस अस्थि पंजर के अंत होने का समय आए। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज, हे भगवान आप अपने चरण कमल में, पंजर के अंत होने का जब समय आए तो आपके चरण कमल में ये मेरा मन लग जाए। और तुरंत मन थोड़े लगता है, ये तो अभी से अभ्यास करते रहो। विष्णु सहस्रनाम का पाठ क्यों करते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात विमुच्यते, जन्म संसार रूपी बंधन से वह मुक्त हो जाता है। जो भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाबुलनाथ में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, हरिद्वार में गंगा नहाते हैं, नासिक कुंभ उज्जैन कुंभ करते हैं, ये सब कब की तैयारी हो रही है मालूम है? जिस दिन प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त ही, जब ये प्राण प्रयाण करता है यात्रा के लिए निकलता है, अभी तक तो आना जाना जारी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि निकलने के बाद ही अंदर नहीं आएगा। प्राण प्रयाण समय, प्रयाण का मतलब है वहां पर प्रस्थान, विशेष रूप से अभी उसकी यात्रा हो रही है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव भ्रुगोर मध्य प्राण मावेश सम्यक, क्योंकि प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। जब जब हम हमारी श्वास की गति बढ़ती है ना, उससे हमारा मन विचलित होता है, क्योंकि मन प्राण के द्वारा नियंत्रित हो तो ऐसे शांत मन से हम अपने को जानने का प्रयास करते हैं, और यदि ये मन का कारण ही इधर उधर हो जाए तो मन की फिर क्या स्थिति होगी, और ऐसे मन से फिर अपने स्वरूप का बोध कैसे होगा। प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त, वात पित्त और कफ, ये जब गले में आ जाए, गड़गड़ाहट हो, नाम लेना चाह रहे बोल नहीं पा रहे, घर वाले आ रहे बोले कुछ तो बोलो, आप मुझे पहचानते हो, सिर हिला करके हां या ना, जब सिर हिलाने की भी स्थिति नहीं रहती तो आंख से हां या ना का मालूम पड़ता है, आंख से भी बोल देते हैं ना, पहचानते हो तो अपने आप मानना पड़ता है इन्होंने पहचान लिया। अब वो आंख बंद किसके लिए क्या हो तो वही जाने, या तो आंखें थक गई होगी इसे पलक गिराई होगी, लेकिन हम उससे क्या मान लेते हैं कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, पलक गिरा करके हामी भर दी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वहां ऐसा मान लेते हैं कि यदि शरीर हिलाने लायक नहीं है, मस्तक नहीं हिलाया तो आंख के पलक गिरा करके बता देते। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, तो अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, ये जो मन रूपी राजहंस है ना, बोले आज ही हे प्रभु आप अपने चरणों में ले लो, ये मन इधर उधर ना जाए, इस मन को मजबूत यदि करना है तो भगवान के शरणागत होकर के ओमकार का जो उच्चारण किया जाता है, इस ओम का मतलब होता है कि मेरी रक्षा करो, आप मुझे अपने शरण में ले लो, क्योंकि मन का स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा है सूक्ष्म, जैसे भगवान ने मस्तक पर धारण कर रखा है, ऐसा जब मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, विषयों की जो स्थूलता है, रजोगुण सत्वगुण का जो प्रभाव है, वह कुछ भी नहीं आने दिया अपने मन में, केवल ज्ञान की तरफ ध्यान था, इसी के लिए पंचदशी में कहा गया है ना, शब्द स्पर्श रूप रस ये सब भिन्न भिन्न होने पर भी इनका ज्ञान एक है, उस ज्ञान की ओर जब हम बढ़ने लगते हैं, यही प्रत्यक्ष तत्व विवेक है। जब ऐसा विवेक संपन्न जीवन होगा, ऐसे मजबूत मन को, मन के द्वारा जब उस परमात्मा को पकड़ा जाएगा, तो फिर न तो परमात्मा हमें छोड़ने वाले, न हम परमात्मा को छोड़ने वाले। नहीं तो कहीं उस जहरीले मेढक को पकड़ करके जैसे सांप दुविधा में पड़ जाता है, ऐसे कहीं हम दुविधा में न रह जाए। इसके लिए कर्ता पिनाहम कार्यता पिनाहम भोक्ता पिनाहम भोजिता पिनाहम, बोलिए, पढ़िए, याद करिए, लेकिन साथ में अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना है, इसके साथ दुनिया के व्यवहार का घालमेल मत करो। अहम ब्रह्मास्मि तो अहम ब्रह्मास्मि, बात खत्म। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहेंगे तो कहीं अहम ब्रह्मास्मि बोलना भी नहीं है, बोल करके काम गड़बड़ होता है। बिना बोले ही इसका अनुभव करना चाहिए। तो भगवान की कृपा हम सब के ऊपर प्राप्त हो, इसके लिए अभी और भी अज्ञान का जो स्वरूप है, अध्यास की निवृत्ति का क्या उपाय हो सकता है, इसका फिर विचार करेंगे। हरिओम।